यूरोप की इस आम प्रणाली से इंग्लैंड एकदम अलग साबित हुआ। यहाँ छोटे किसानों की उपज को 17वीं शताब्दी से बहुत पहले ही उपेक्षित किया जाने लगा था। 16वीं शताब्दी में भी यहाँ ऐसे धनी किसानों की एक पंक्ति दिखाई दे रही थी जो खेतों पर बाड़ लगाकर कम्यून के प्रतिबंध से मुक्त हो गए थे और नई तकनीक अपनाने लगे थे। वे नई फसलें लंबी अवधि के फसल चक्र में बोते थे और पशुपालन का व्यवसाय भी अपनाए हुए थे। ये सभी तरीके उपज बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थे। किसान वर्ग के अंदर इंग्लैंड में अंतर इतनी तेजी से क्यों आया? इसका एक प्रमुख कारण यह था कि सामंती जमींदारों का प्रभाव वहाँ बाकी यूरोप की अपेक्षा बहुत देर से हुआ। फ्रांस में 11वीं-12वीं शताब्दी में ही सामंती करों और किराए के विरुद्ध किसान संगठित होने लगे थे। उनके इन्हीं सुदृढ़ कम्यूनों के कारण बाद में भी फ्रांस में धनी कृषक बुर्जुआ वर्ग नहीं पनप सका। फ्रांस के कृषक समुदायों की एकता का संबंध इस तथ्य से भी है कि 9वीं से 11वीं शती के बीच जहां ग्राम कम्यून बने तब वहां के किसान एक जैसे धनी तथा सम्मानित थे। इसलिए वे लोग अनियमित लगान व कर वृद्धि और जुर्मानों के विरोध में एकजुट होकर जमींदार के विरुद्ध लड़े। विशेषतः 12वीं-13वीं शताब्दी में घोषणा पत्र आंदोलन चार्टर के दौरान उनके बीच फ्रांस में जबरदस्त एकता रही। इंग्लैंड में छोटे किसानों पर सामंतों का नियंत्रण 11वीं शताब्दी के अंत में नॉर्मनों की विजय के पश्चात बाद में शुरू हुआ, अर्थात फ्रांस से 250 साल बाद। तब तक वहाँ खेती में नई तकनीकों का प्रयोग व्यापक हो चुका था। इंग्लैंड में भारी हल और हल्के हल का या हाथ से चलाए जाने वाले हलों का अंतर काफ़ी था। इन दोनों वर्गों का सामंती जमींदारों से संबंध भी अलग अलग तरह का था और शुरू में ही यह असमानता कानूनी मान्यता के रूप में निर्धारित हो गई थी। धनी किसान जमीन के मालिक थे तथा उन पर रूढ़िगत विधि कानून जिसमें उनका अपनी जोतों पर हक माना जाता था लागू होता था। बाकी अन्य किसानों की मजदूरी पर शुल्क लगाए गए। ये लोग पूर्णतया सामंती जमींदारों की कृपा पर आश्रित थे तथा 12वीं शताब्दी से इन पर रूढ़िगत विधि कानून भी लागू नहीं होते थे। इसलिए अंग्रेज किसानों में फ्रांसीसी किसानों की तुलना में सर्वसमतावादी प्रवृत्ति बहुत कम थी और इसी कारण 16वीं-17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के किसान वर्ग में से ही कृषि उद्यमी आसानी से उभर आए, जिन्होंने धीरे धीरे उत्पादन के कारक अपने वश में कर लिए और कृषि क्षेत्र में पूंजी प्रणाली की शुरुआत की। इंग्लैंड में एक और स्तर पर भी कृषि उद्यम पनपा। वह निचले तबके के सामंतों और जमींदारों में पनपा था। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही जगह समृद्ध और सामंत लोग 13वीं और 16वीं शताब्दी में मूल्यों में वृद्धि का शिकार हो गए थे, परंतु केवल इंग्लैंड में इन लोगों ने अपनी जमीन का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के नए तरीके अपनाकर अधिक कारगर ढंग से किया। ऐसा क्यों हुआ? फ्रांस में राजशाही ने इन सामंतों को अपने प्रशासन तंत्र व सेना में अच्छे अच्छे पद देकर आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित बना दिया। 17वीं शताब्दी तक सामंत लोग अपने वर्ग में किसी और को शासित करने के पक्ष में नहीं थे। इसी तरह फ्रांस में राजशाही ने इसे आर्थिक व सामाजिक दोनों दृष्टियों से सुरक्षित करने का प्रयास किया था। इसके विपरीत इंग्लैंड के ट्यूडर और स्टुअर्ट शासन में इंग्लैंड का एक ऐसा बड़ा प्रशासनिक व सैनिक ढांचा नहीं था कि वहाँ के सामंत लोगों को उसमें खपा लिया जाता। इसलिए इंग्लैंड के अधिकांश सामंतों व समृद्ध लोगों को अपने लिए साधन खुद जुटाने पड़े। 14वीं और 15वीं शती के आर्थिक संकट के दौर में ही इंग्लैंड के जमींदार सामंत अपनी जमीन पर फसलों का दीर्घकालीन क्रम और व्यापारिक स्तर पर भेड़ पालन का कार्य कर रहे थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इन लोगों ने अपनी जमीन से अधिक लाभ उठाने का प्रयास शुरू कर दिया। बाड़ लगाकर तथा और जमीन खरीदकर इन सामंतों ने अपने बड़े बड़े फार्म बना लिए। यह फार्म समृद्ध किसानों को बटाई पर दे दिए गए, परंतु अंग्रेज अभिजात या जमींदार की रुचि जमीन की उत्पादकता बढ़ाने में फिर भी बनी रही। जमीन के इर्द गिर्द बाड़ लगाने, दलदली भूमि से पानी निकालने तथा नई फसलें शुरू करने जैसे कृषि सुधार लागू कर इन सामंतों ने सुधारवादी अंग्रेज जमींदार का नाम कमा लिया। इसी काल में कोयला और लोहे की खानों का विस्तार भी अंग्रेज जमींदार अभिजात वर्ग की वजह से संभव हो सका था। इन कार्यों को पूरा करने के लिए व्यापारियों से ऋण लिए गए। धीरे धीरे इन जमींदारों, व्यापारियों तथा निर्माताओं के बीच घनिष्ठ संबंध कायम हो गया तथा पैसा कृषि क्षेत्र से व्यापार और शिल्प में तथा शिल्प से व्यापार और खेती में आने जाने लगा। इस तरह इंग्लैंड में एक सशक्त और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक पूंजीवादी वर्ग तैयार हो गया, जिसके हित संसद में बैठे जमींदारों के कारण सरकार में भी सुरक्षित थे। ये लोग धीरे धीरे इतने सशक्त हो गए कि एलिजाबेथ और स्टुअर्ट राजाओं की प्रतिबंधकारी आर्थिक नीतियों के मुकाबले में जमे रहे तथा जरूरत पड़ने पर 1632 के गृह युद्ध में उन्होंने स्टुअर्ट राजवंश को उखाड़ने के निर्णय का समर्थन किया। इसी तरह 17वीं शताब्दी के मध्य तक छोटे किसानों का अस्तित्व मजदूरों के रूप में सामने आने और दूसरी ओर सशक्त पूंजीवादी वर्ग के उभरने से इंग्लैंड में 1750 के बाद होने वाली कृषि क्रांति का तथा 1800 के बाद होने वाली औद्योगिक क्रांति का सुदृढ़ आधार तैयार हो गया था। इंग्लैंड में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार तो 16वीं 17वीं सदी में ही तैयार हो गया था।